اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ والعلیہ، اما بعد، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ میں نے روکا تھا لیکن اب میں کیا کروں، میرے بھی جذبات قابو میں نہیں رہے، وہ اسٹیج پر لانا شروع ہو گئی۔ ہماری ایک اور بہن نے آج اپنا سیٹ گولڈ کا ہدیہ کیا ہے، ابھی اور بھی بہت سارے انتظار میں، لیکن میں یہ صرف اس لیے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مظلومیت جو ہے نا، یہ اس کی اپنی ایک فتح کا انداز ہوتا ہے۔ یہ جو ہدیے آ رہے ہیں نا، یہ فتح ہے حماس کی، یہ فتح ہے حزب اللہ کی، یہ فتح ہے ان معصوم بچوں کی جن کے گوشت کے ٹکڑے اڑ گئے، یہ کر لیں، یہ فتح ہے، یہ فتح کا نقارہ ہے۔ ان چیزوں پہ دیکھیے، میں معذرت کے ساتھ، آپ سب جانتے ہیں کہ خاتون کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے اس میں یہ زیور ہوتا ہے۔ جب مومنات اس نہج پر آ جائیں تو سمجھ لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، سب کو سلامت رکھے، اس جذبے کو سلامت رکھے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میرے پاس ایسے بھی، ہمارے پاس یعنی جو بچوں نے اسٹال لگایا تھا یہاں پہ، ہم جو کیمپ لگائے بیٹھے ہیں، ایسے ایسے بھی لوگ آئے کہ جو معاشی طور پہ جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ 500 روپے دیتے ہوئے ان کے چہرے پہ تھوڑی سی شرمندگی یا خجالت تھی۔ تو میں انتظار کر رہا تھا کہ جلسے میں بتاؤں گا کہ یہ 500 روپے 5 کروڑ والوں سے زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس یہی 500 تھے، آپ نے وہ دے دیے۔ اب کسی نے اگر 1 لاکھ دیے تو ماشاءاللہ اللہ اور اس کو برکت دے، اس کے بعد لاکھوں تھے اس نے 1 لاکھ دیے، جس کے بعد تھے کروڑ اس نے 2 لاکھ دیے، آپ کے پاس تو جو تھے آپ لے آئے۔ زیادہ اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ اپنے اس معاشی بدحالی کے دور میں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے 500 روپے بھی اگر لا کے دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا اجر ہے۔ تمام مومنین کی سربلندی کے لیے، فتح یابی کے لیے، تمام مجاہدین کی فتح یابی کے لیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، مختصر سی بات ہے، سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ یہاں ماشاءاللہ علماء کرام کی بڑی تعداد، ہمارے برادر عزیز سب سے، اور میں ان کو نوجوانی سے ہی، ہم سب محمد حسین محنتی صاحب بھی اور ہم لوگ بھی سب مختلف تحریکوں میں بھی ساتھ ہیں، اب ظاہر ہے کہ سب پہ بڑھاپا آ گیا، ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، ہمیشہ ہر دور میں، جس دن سے، وہ صحیح بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب سے انقلاب آیا ہے وہ ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں جو، ایسا نہیں کہ موسمی لوگ ہیں، کہ موسم ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، کبھی اس طرف چل پڑے، کبھی اس طرف چل پڑے، کبھی اس طرف، نہیں، پہلے دن سے جو انقلاب کے ساتھ ہیں اور سمجھتے ہیں مسائل کو، یہاں نہیں پاکستان، ایران نہیں بلکہ مصر کی تحریک ہو، مصر میں تحریکیں ہوں، ترکی میں تحریکیں ہوں، عالم اسلام میں، جہاں کہیں بھی اسلامی تحریکیں ہیں، الجزائر ہو، خود پاکستان ہو، ہند ہو، بنگلہ دیش ہو، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر جگہ اسی طرح سے ساتھ کھڑے ہوئے انقلابی قوتوں کے، کہ محض ایران نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی انقلابی تحریکیں ہیں، ان سب کا حصہ ہے، ان سب کا شیئر ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اور الحمدللہ پروردگار، میں کہتا ہوں کہ آخری سانس تک ساتھ رکھے۔ اور ایسا بھی ایک دن آئے، معراج الہدیٰ صاحب، میں نے حافظ نعیم الرحمٰن صاحب نے بھی یہ دعا کی تھی کہ ایک ایسا دن آئے کہ ہم سب مل کر مسجد اقصیٰ میں ایک جماعت، ایک نماز جماعت قائم کریں، اور پوری دنیا کو دکھائیں کہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، جو ہے وہ اللہ کا سپاہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے، آج صبح پھر وہ بڑا شور مچایا میڈیا نے، کہ میں جاگ رہا تھا جب یہ تقریباً کوئی 4 بجے یہ ہوا، 4:30-5 بجے سے خبریں آنی شروع ہوئیں، میں بھی مانیٹر کر رہا تھا، سب کو دیکھا، بڑا جناب ہنگامہ مچا کہ یوں تباہ برباد ہو گیا تہران، برباد ہو گیا اصفہان، شیراز، مشہد، کرچ، کوئی خلاصہ چھوڑا نہیں، ایلام، خوزستان کا علاقہ جو ایلام، معذرت، کردستان، یہ سارا جناب برباد ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، اتنا پروپیگنڈا ایک دم، ایسے دیکھ رہا تھا CNN BBC سب شروع، برا لگ، اور آگ لگتے ہوئے دکھا رہے ہیں، ریفائنری جل گئی تہران کی، پتہ نہیں کیا کیا جل گیا، کیا کیا جل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں کا میڈیا، ان کا ایک چینل ہے، چینل 13 عبرانی، یہودیوں کا ایک چینل ہے سرکار 13، اور ایک ہے یروشلم ٹائمز، सबसे पहले उन्हीं ने भांडा फोड़ा कि भाई ये तो 3 साल पुरानी रिफाइनरी की आग लगी हुई दिखा रहे हो, वो जो आग लगी हुई वो दुनिया के चैनल ने, फिर वो मैंने डॉन की रिपोर्टिंग देखी, सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, भाई तो पुरानी है ये, तो 3 साल पुरानी, ये तो आग लगी हुई दिखा रहे हो, 3 साल पहले रिफाइनरी, फिर बैरूत का धमाका दिखा दिया, यूक्रेन का दिखा दिया। ये उनके मीडिया ने, यरूशलम टाइम ने यहां तक उनको कहा कि तुमने हमें धोखा दिया, ये भी चल रहा है, वहां हंगामा चल रहा है इसराइल, उनका मीडिया कह रहा तुमने पागल बनाया, फेस सेविंग की थी उन्होंने, याद जो क्या है ये फेस है। और सुबह वो क्लिप सब पूरी दुनिया में चल रही है कि तेहरान में लड़के खड़े हुए छतों के ऊपर दूरबीनों से देख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे कि किधर हमला हुआ, कहां हमला हुआ, किधर ड्रोन गिरा, किसी घर से धुआं उठ रहा है, कह रहे ये इसराइल ने अटैक किया है, वो घरों से धुआं नहीं, भाई हुआ, बस वो फेस सेविंग के लिए कर करा के भाग गए, और ईरान ने खुद बता दिया कि 2 शहीद हुए उनके। मगर इन सबसे अलग हटके असल बात क्या है, हो सकता है इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता, हो सकता है बैरूत पे नहीं हुआ, हसन नसरुल्ला को शहीद नहीं कर दिया गया, इस्माइल हानिया, यहया सिनवार, हसन नसरुल्ला से पहले जो सरबरा था अब्बास मूसवी, उनके बाद सैयद हाशिम, शफीउद्दीन, कितने नाम लेंगे, शेख यासीन को भी मैं शहीद ही कहूंगा, क्योंकि इतना तशद्दुद उन पर हुआ था इसराइल के जिंदानों में कि उसके बाद वो जब रिहा हुए तो फिर जिंदा नहीं रह सके, मैं उनको शहीद ही कहता हूं, शेख यासीन को जो इसके पहले, यानी जिसको यूं समझे कि जो हमास का नाम नहीं था लेकिन हमास की बुनियादें रखने वाले, कयाम की बुनियादें रखने वालों में शेख यासीन थे, ठीक है, आगे भी हो सकता है, एटमी हमला हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, मैंने आज कह दिया ना कि आज कुछ नहीं हुआ मुमकिन है, कल इससे बड़ा हमला हो जाए फिर क्या होगा, तेहरान पर हो, आसमान पर हो, शिराज पर हो, बैरूत पर हो, बगदाद पर हो, दमिश्क पर हो रहे, इससे बड़े बड़े हमले हो जाएं, खंडर बन जाए गजा की तरह, सब जितनी भी मुकाबलत की जगह हैं खंडर बन जाए, फिर क्या होगा, हार गए, जंग खत्म हो गई, अगर इस तरह जंग खत्म होती, इस तरह बातिल जीतता, खंडर बना के हजारों लाखों लोगों को मार के, लाखों लोगों को बेघर करके, बेवतन करके, अगर बातिल जंग जीतता तो फिर करबला में इस्लाम का खात्मा हो गया, खत्म हो गया होता इस्लाम, उससे कीमती जाने कहां थी, कहां है, खत्म हो जाता ना, खत्म हो गया नहीं, उसूल याद रखिए, जितनी बड़ी कामयाबी लेना है उतनी ही बड़ी कुर्बानी भी देना है। ये तस्वीरें देख रहे हैं अजीम शोदा की, यही रहबर ने कहा है 2 दिन पहले, रहबर ने कहा यही रावत है कि इतने बड़े लोगों की शहादतें बता रही हैं कि बातिल की बर्बादी करीब आ गई है, इतने दलेर लोगों की शहादतें ये बता रही है कि बर्बादी करीब आ गई, हम क्या करें भाई, अल्लाह जानता है हमारे दिलों के हाल, हम जाना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, यही है असली सत, लड़ना, लेकिन हमारे लिए राहें मसदूद, राहें बंद, फिर क्या करें, उनकी पुकार का जवाब तो दें, आप क्या समझ रहे हैं यहां पर आपका बैठना क्या माने रखता है, आपके इस कैंप की वजह से यकीन करें मेरी बात का, और मुझे गलत बयानी की जरूरत भी नहीं आपके सामने खामखा में, कितनी ही जगहों पे लोगों ने कैंपिंग के लिए हमसे रابطہ कर लिया, क्या कहा साहब हम भी अपनी आबादी में कैंप लगा रहे हैं, मैंने कहा मैं हर जगह जाऊंगा, जहां जा सकता हूं जाऊंगा, शुरू करो तुम लोग, ये आपने बात हुई होती इनिशिएटिव ले, पहला कदम उठाना, यहां के बच्चों ने हमारे या जो भी तंजीमें शामिल थी आईएसओ के साथ जितनी भी थी हैते में मसाजिद वगैरह सब इन्हीं ने इनिशिएटिव लिया, ये खड़े हुए, मौलाना सादिक रजा तकी साहब ने इनकी सरपरस्ती शुरू की, फिर देखिए काफिला बनता गया कि नहीं बनता गया, शुरू दिनों में मुझे मालूम है कोई रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक कंपेन बन गई, बनी कि नहीं बनी, लोग जो, और आज भी मैं जानता हूं कितने लोग अभी इंतजार कर रहे हैं ना, वो रोका हुआ उनको कि बीजेपी खत्म होगा तो उसके बाद, बात ये होती कि कितनी बार मिसालें आप सुन चुके हैं। हम इतना तो यकीन करें कि कम से कम उस चिड़िया के बराबर तो हमारा दर्जा जरूर होगा जो अपनी मिनकार में, अपनी चोंच में कतरा, एक पानी का कतरा लेके जनाब इब्राहिम को जलाने के लिए, माजल्ला जो आग लगाई गई थी उसे बुझाने के लिए जाती थी। नाम तो लिखवा रहे। सवाल यही था ना कि तू क्या कर लेगी, तेरी चोंच का ये कतरा आग कैसे बुझाएगा। उसने आग बुझे ना बुझे मुझे इससे गरज नहीं है, मुझे इससे गरज है कि मेरी चोंच में कितना पानी आता है बस। अल्लाह इससे बड़ी चोंच देता तो मैं इससे ज्यादा पानी लेके जाती। ड्यूटी, फरीजा, अपना फरीजा अंजाम देना है भाई। हम यहां अपनी तकलीफ शरी अदा कर रहे हैं, कोई साथ दे या ना दे, हम अपने भाइयों की आवाज पे लब्बैक कह रहे हैं। कयामत के दिन सुरखरू हैं, कम से कम वो बच्चा, मासूम बच्चा हमसे गिला नहीं करेगा जो ये कहते हुए दम तोड़ रहा था कि रसूल अल्लाह की बारगाह में जाके इस उम्मत की शिकायत करूंगा जिसने मेरा साथ नहीं दिया। उन बच्चियों के सामने, उन ख्वातीन के सामने, उन बूढ़ों के सामने, उन बेगुनाहों के सामने हम सुरखुरु होंगे कि जो हमसे हो सकता था वो हमने किया है। इससे ज्यादा अल्लाह हमको देगा ताकत, हम इससे ज्यादा करेंगे, हमें किसी का खौफ नहीं। वो शुरू में लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वो जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एजेंसियां आ जाएंगी, दफा करो इनको, मलूनों को, ये इसराइल के पिट्ठू, ये अमेरिका के पिट्ठू। ये बुजदिल लोग, ये फकीर लोग, ये भिखारी लोग, ना इनमें गैरत है, ना इनमें हमीयत है। समझ में आ रही है हमारी बात? हम उनमें से नहीं। ये बताना चाहते हैं दुनिया को, हुक्मरान बेगैरत, बेहमीयत, बुजदिल, हम नहीं। हम मरना जानते हैं, हमें मालूम है कैसे मरा जाता है। कोई हमारी इज्जत हमसे नहीं छीन सकता, हम इज्जत से मरना जानते हैं। हाथ मिन्ना जिल्ला, है हाथ, है हाथ। समझ में आ गई बात? तकलीफ शरी, शरी वजीफा, वो अदा करने के लिए हम यहां जमा हुए हैं। हम इसलिए जमा हुए हैं कि हमें क्या करना है। लिहाजा खत्म करता हूं बात को। शुक्रिया तुम्हें कह रहा हूं कि इनमें से कोई नहीं चाहता कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए, लेकिन एक इंसानी फरीजा, जो इंसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। तो मेरे बिरादरी अजीज हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब भी कल वादा किया था, देखिए तशरीफ लाए, और डॉक्टर साहब का तो मैं शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता। बहरहाल वो हमेशा से हम कदम, हम प्याला, हम निवाला, हम दम रहे, हम रज्म और हम बज्म, सब मौलाना हयात अब्बास नजफी साहब यहाँ, और मौलाना कंबर शाह नकवी साहब, मौलाना सफ़ीर नकवी साहब, फिर बाकर जैदी साहब ने वादा किया था, देखिए माशाल्लाह तशरीफ़ ले आए, और ये अभी कुछ देर काउंटर पे बैठेंगे हमारे। जिसको प्रोग्राम के तहत जाना होगा मैं उनको नहीं रोकूंगा, मैं जानता हूँ ज़ाहिर है कि इस शब है इतवार की प्रोग्राम होते हैं उलमा के, लेकिन जो होंगे वो यहाँ बैठेंगे, उनके सामने आप लोग हदायत दीजिएगा। और फिर और भी उलमाए किराम, हाँ सज्जाद साहब भी तशरीफ़, खैर ये तो मेज़बानों में हैं, अभी मैं इनका क्या शुक्रिया अदा करूँ। बशीर साहब हैं, ये लोग हैं, ये सब मौलाना मनोहर नकवी साहब, ये तो सब मेज़बान हैं। और बहरहाल लेकिन आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत की, और वाकई मैं इनको देख के, मैं चार दिन पहले जब आया तो देख रहा था कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से जैसा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे थोड़ा सा इन पर प्यार भी आया, मोहब्बत भी आई, और मोहब्बत में मेरी इजाफा भी हुआ, मोहब्बत तो मैं करती हूँ इनसे। तो फिर मैं इंशाल्लाह मैंने इनसे कहा कि नहीं हम बैठेंगे सब मिलके करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहला कदम उठाने वाले मेरे बच्चे हैं, इनका क्रेडिट किसी को भी नहीं लेना चाहिए, इनका क्रेडिट इन्हीं के पास रहना चाहिए। हम तो यह है कि इनके साथ साथ चल रहे हैं, परवरदिगार इन सबको सलामत रखे, इन सब बच्चों की जिसको कहना चाहिए कि सेहत और सलामती के साथ साथ तौफीकात में इजाफे के लिए दुआ कीजिए, और अल्लाह इनको बड़ेपन से, बड़े बोल से, तकबर से महफूज रखे। इनकी तौफीकात में इजाफे के लिए बुलंद आवाज से मिलकर एक सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अजीजो, अभी हाशिम सफीउद्दीन एक के बाद एक आप देख रहे ना कि वो शख्सियतें जा रही हैं कि मैं हैरान था कि किसी वक्त हमें भी बहुत झटका लगता था ना अंदर तो कि ये क्या हुआ, सुबह उठे खबर आई एक। मैं हैरान हूँ इस बात पर कि 85 साल के बूढ़े का हौसला कितना है, कितना। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि जब इस फर्जंदे अली और जहरा, फर्जंदे हुसैन, फर्जंदे हसन, खामनाई का इतना हौसला है, कितने बड़े बड़े जख्म, इतने बड़े बड़े जख्म, मैंने आंसू भी देखे आंखों में। ऐसा नहीं कि कई मौकों पे कासिम सुलेमानी, हसन मसला, इस्माइल हानिया की शादी में आंसू देखे, लेकिन जब वो लोगों के सामने बात करते एक अजीब, यानी हिमालय का लफ्ज मुझे छोटा लगता है, रहबर के अज्म के सामने मुझे लफ्ज नहीं मिलते। इस शख्स का हौसला, इसकी बर्दाश्त, क्योंकि ये जानता है कि करोड़ों लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। ये थी कयादत, करोड़ों लोगों का मरकज नजर है रहबर की जात। लिहाजा जब रहबर ने खिताब किया लोगों के सामने आकर, एक मैंने कहा ना कोह का लफ्ज बहुत छोटा लगता है मुझे, आसमान एक अज्म सुबात का, इस्तकामत का आसमान बन के गुफ्तगू करता है, यानी टूटे हुए दिलों का सहारा मिलता है, हम जैसों को हौसला मिला। फिर मैं सोचता हूं कि जब ये गुलाम का अज्म का ये आलम है, फिर सोचता हूं कि हुसैन का अज्म क्या होगा, क्या होगा, क्या गुजरती होगी हुसैन पर जब एक एक करके लाशा हुसैन एक एक का उठा कर लाते थे। हुसैन के अंसार के बारे में दो लफ्ज मुझसे सुनिए। जब जुहैर बिन कैन जख्मों से चूर होकर गिरे थे तो हबीब अभी मौजूद थे, जनाब सैयदुल शहदा के साथ गए थे हबीब, और हबीब के सर पे, हबीब के जानों पे पहले सर था जनाब जुहैर बिन कैन का, जो फिर हुसैन ने अपने जानों पे लिया था। तो जाते जुहैर बिन कैन ने वसीयत की, वसीयत, हबीब हाथ पकड़ लिया हबीब इब्ने मज़ाहिर का, हबीब मेरी वसीयत याद रखना। क्या वसीयत करे थे? हबीब देखो, फर्जंदे रसूल को तन्हा ना छोड़ना, अपनी फिक्र नहीं है, अपने बच्चों के लिए वसीयत नहीं कर रहे जुहैर, किसके लिए वसीयत कर रहे हैं? हुसैन की तरफ से होशियार रहना, हुसैन की तरफ से होशियार रहना। दो भाई अब्दुल्ला इब्ने यजीद इब्ने बसीत अंसारी और उबैदुल्ला इब्ने यजीद बसीत अंसारी, ये बसरे के थे दोनों भाई, बाप के साथ आए थे जिहाद में हिस्सा लेते हुसैन के। जब सुबह का हमला हुआ था तो ये खेमों के गिर्द लड़ रहे थे कि खेमों तक पहुंचे नहीं यजीद के सिपाही, लड़ रहे थे और रो रहे थे, गिरिया कर रहे। हुसैन ने आवाज देकर कहा, गिरिया मत करो, अफसोस मत करो, अभी थोड़ी देर में तुम हौज कौसर पे होगे, जाम कौसर से मेरा बाबा तुम्हें सैराब करेगा। तो दोनों मुड़कर कहते हैं कि फर्जंद जहरा, अल्लाह गवाह है कि हम अपने लिए नहीं रो रहे, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि अभी कुछ देर में हम शहीद हो जाएंगे, फिर औलाद रसूल का क्या होगा। ये थे अंसारे हुसैनी और ये था अंसारे हुसैनी। तो जब अंसार का ये आलम था तो सोचिए, जब अब्बास घोड़े से गिरे थे, इतना आसान नहीं ये जुमला, जब अब्बास ने आवाज दी थी मौला अपने गुलाम की खबर ले मैं चला, तो ये वो वक्त था जब हुसैन ने अपनी कमर को थाम कर कहा था, अलान इनकसरा ज़हरी, अब्बास अब मेरी कमर टूट गई। यानी जब तक अब्बास थे एक ढारस थी, हरम की भी ढारस थे ना अब्बास, और जनाब अब्बास का मकाम देखिए आप किस आलम में गिरे थे घोड़े से। बस दो तीन जुमले मैंने मसाहिब को खत्म कर दिया, सुनिए क्या आलम था अब्बास के, जो भी गिरता है फितरत इंसानी का सहारा है ना कि बुलंदी से पस्ती की तरफ आता है तो हाथों का सहारा लेगा। उम्मुल बनीन के लाल के बाजू नहीं थे, जब बाजू कट चुके थे, मशकीजे का पानी बह चुका था, चारों तरफ से तीर सनसनाते हुए आते थे, जनाब अब्बास के जिस्म पेवस्त होते चले जाते थे। अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि जुजियात में कहां से लाता हूं, या कोई भी आलिम कहां से जुजियात लाता है? नहीं, हमें नहीं मालूम होता। हमें क्या मालूम होता कि किसने तीर मारा था, किसने एक बाजू काटा, किसने दूसरा बाजू काटा? नहीं, ये भी मशीयत का इंतजाम था कि इनाम के लालच में इब्ने ज़ियाद के दरबार में और यजीद के दरबार में एक एक कातिल ने अपना जुल्म खुद बयान किया था, एक एक कि मेरे दामन को जरो जवाहर से भर दे, मैंने अब्बास का एक बाजू कलम किया था, मेरे दामन को जरो जवाहर से भर दे, मैंने अली अकबर के सीने में बर्छी मारी थी। जब ये आलम था, चारों तरफ से तीर आ रहे थे, एक तीर जनाब अब्बास की आंख में लगा था। ये जो आंख में तीर लगा था तो इसकी अजियत इतनी थी कि आप सर को झटके देकर चाहते थे कि इस तीर को निकाल दें, नहीं निकाल सकते। तो कटे हुए बाजुओं को जोड़कर चाहा था ये तीर खींच ले, ना खींच सके। तो आपने पूरी ताकत जमा करके जानुओं को फिजा में बुलंद किया था अपनी सवारी पर, और दरमियान में तीर को लेकर खींचना चाहते थे कि उसी वक्त एक मलून ने गुर्ज सर पर मारा था। बस इस गुर्ज का लगना था, अब्बास इस तरह से घोड़े से नीचे आए थे सर के बल के सारे तीर आपके जिस्म में बेवस्त हो गए। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।